अल्लाह सुभान तआला ने यहाँ नए नए ईमान की बात की है। होता यह कि जब इंसान की जिंदगी में नया नया कुरान आ जाए या ईमान आ जाए तो जो दिल की कैफियत है ना वो ऐसी होती है, पानी अंदर आता है वही का अंदर हलचल मचती है, जब हलचल मचती है तो अमल बदलने लगता है, सोच बदलने लगती है, इंसान का के बोल बदलने लगते हैं। इंसान को हर दिन महसूस होता है कि ये तो एक नई दुनिया है। आप सोचिए ना कि मुआशरा एक समंदर है और कुरान वाला उस समंदर में मुखालिफ सिमत में चलने वाला एक शख्स है। जो ही इंसान को कुरान पढ़ने से, अल्लाह के नबी की बात सुनने से इस तरह की एक कैफियत मिलती है कि जिसको आप यही कह सकते हैं कि दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। वो उस कुरान के इल्म को जज्ब करना चाहता है लेकिन मुआशरे वाले बेचैन हो जाते हैं। ये जो झाग है ना ये मुखालफतों की झाग है। ऐसे लगता है सब हमारे मुखालिफ हो गए, पता नहीं हमने लोगों की क्या चीज चुरा ली कि हर तरफ शोर मच गया। उसको देखो किधर जा रही है, क्या हो गया, उसकी हालत देखो, बच्चों का क्या होगा, घर गंदा है, पता नहीं क्या करेंगे, इनको क्या हो गया, किसकी बातों में आ गए। ऐसे लगता है कि चारों तरफ शोर 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 हुआ और जो इंसान इस चीज में होता है वो बाज दफा इस शोर की वजह से घबरा जाता है। वो कहता है ये क्या हो गया, शायद मैंने कोई गलत रास्ता अपना लिया। अब दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो लोगों की बातों से बहुत ज्यादा मुतासर होते हैं, पीयर प्रेशर का शिकार हो जाते हैं, वो कहते हैं नहीं हम इस माशरे से कट के नहीं रह सकते, वो ये सोचते हैं कि ये झाग हमेशा रहेगा। हालांकि अगर आज ही उसको ये पता चल जाए कि झाग की कैफियत क्या है, झाग को खत्म करने का तरीका क्या है, लेट इट गो, थोड़ी देर में सब मुखालफतों की झाग छटने लगती है। आज के दुश्मन कल के दोस्त बनने लगते हैं। आप अपनी जिंदगी का एक नया रंग जुलाने वाले थे। ये कभी नहीं हो सकता कि इंसान की जिंदगी में हक आए और तब्दीली ना आए, इम्पॉसिबल है। इंसान दो तरह के होते हैं, एक वो होते हैं जो अजीमत की राह पे चलते हैं और एक फराइज की राह पे। दोनों में फर्क क्या है, आसान लफ्ज बोलूंगी ताकि हम सब इसको समझ सके। आप देखिए कि एक वो हैं जो 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़ा भी रखो, यानी बिल्कुल अपने फ़राइज़ एक्सीलेंसी के दर्जे पे पूरे करते हैं, सदका खैरात भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी ज़िंदगी में कोई डायनामिज्म नहीं होता। वो अपने लिए तो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन इस्लाम लोग दूसरों के लिए वो इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होते। ऐसे लोगों को लोग बहुत पसंद करते हैं। किसी की नेकी की बात करें कहते हैं फ़लाँ 5 वक्त का नमाजी है, सोमो सलात की पाबंद लड़की। आपने कभी रिश्ते के इश्तिहार कभी बचपन में अखबारों में देखे हों तो सोमो सलात की पाबंद। आज भी हम अपने बड़ों के मुंह से किसी लड़के के नेक होने की क्या दलील समझते हैं कि 5 वक्त नमाजी मस्जिद में जाता है, दाढ़ी रखी भी है, शलवार टखनों से ऊपर है और इसके हलाल कमाता है, वेरी गुड एक्सीलेंट। लेकिन याद रखिए कि इस मुकाम पर जीने वाले लोग फराइज़ की सतह पर जी रहे हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये जन्नतों में जाएंगे। अगर हराम से बचते रहे, हलाल की कोशिश करते रहे, फराइज को ना छोड़ा तो अल्लाह इनको आला जन्नतें देगा। लेकिन याद रखिए कि जन्नत के जिक्र में अहादीस से जो बात पता चलती है वो 100 दर्जे है। और सूरत वाक्या को अगर आप सामने खोलें तो जन्नत के जो दो बड़े दर्जे हैं ना, एक असहाबुल यमीन और दूसरे असहाबिकून अलवलून है। इसी तरह सूरत तौबा को आप खोल लें तो अल्लाह ने मुहाजरीन और अंसार के गिरोहों में साबिकून अलवलून का मुकाम दिया है। तो बड़ी ही एहतियात के साथ कहूंगी कि अभी तक जिस गिरोह से आपका तारुफ करवाया है ये असहाबुल यमीन में शामिल होंगे इंशाअल्लाह ताला। और अगर आप तर्जमा सुन के देख लें, इनका प्रोटोकॉल तो है लेकिन सानवी। लेकिन इंसानों का एक दूसरा गिरोह होता है जो फराइज की सतह से ऊपर उठ के अजीमत की सतह पे जीता है, अजम से जा जोए नहीं, अजम कहते हैं ना इरादा। ये कौन लोग होते हैं, वो सिर्फ इस चीज़ की फिक्र नहीं करते कि मैंने नमाज पढ़नी है, बल्कि वो ये भी सोचते हैं कि दूसरों ने भी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, मुझे इसकी भी फिक्र करनी है। ये वो लोग होते हैं जिनको अपने साथ साथ दीन का भी दर्द होता है। ये दीन का दर्द रखने वाले लोग, बल्कि आज का टॉपिक आप ये रख लेना कि दीन का दर्द रखने वाले कौन, तो ये वो लोग होते हैं जो अपनी नमाज पढ़ के मुतमईन नहीं होते कि चलो शुक्र है नमाज पढ़ ली। उनको गम लग जाता है सबसे पहले घर में मौजूद अफराद का, बच्चों ने पढ़ी है, मियाँ जी ने पढ़ी है, सास सोख तो नहीं गई, फिर घर वाले उसकी आंखों के सामने एक एक करके नमाज पढ़ते हैं, तो फिर वो कहते हैं पता नहीं घर में जो मुलाजिम है उन्होंने पढ़ी है कि नहीं, माली बाबा ने नमाज पढ़ी, ड्राइवर ने पढ़ी। फिर होते होते उसकी सोच नेबर्स में जाती है, शायद मेरे नेबर्स फजर के लिए उठ सकें कि नहीं, जरा मैं चेक ना कर लूँ। फिर वो उस रात को पूछता है, अच्छा अगर आप चाहें तो मैं आपको भी बुला दूँ, आपको भी उठा दूँ। यानी इस तरह से ये बंदा तड़पता है कि फिर अपने घर से निकल कर उसको पूरे ग्लोब की फिक्र लग जाती है। ये लोग हैं अजीमत के साथ जीने वाले, ये लोग लोगों को समझ कोई नहीं आते। पूरी सोसाइटी इस वक्त नेकी के जिस मेयार पर रुकी भी दिखती है ना आज हमें, वो फराइज की सतह का है। जब अपनी ज़िंदगी में फारिग वक्त है दीन को वक्त दो, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड कॉज, माशाल्लाह बहुत अच्छा आप काम कर रही हैं। जू ही आपको खुद अपनी किसी चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ गई तो कहते हैं 2 हफ्ते की छुट्टी लिख के दे दो, और वो भी बड़े नसीब वाले लिख के देते हैं, लोग तो बताते भी नहीं छुट्टी से पहले, राइट? ये कौन सा फ़र्क है? अजीमत की सतह पे जीने वाला कभी भी अपने आप को दीन के काम से अलग नहीं कर सकता। नतीजा क्या होता है कि ऐसे लोग लोगों को समझ ही नहीं आते। सिंपल सिंपल सी बात है कि जिनको अल्लाह सुभाना ताला इस तरह मेंशन करता है कि जो है साबिकून अलवलून, आप कहते कि 3 सहाबा ऐसे थे कि अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि जन्नत इनको पुकारती है, इनके नाम लेके पुकारती है। 10 अशरा मुबशरा, कभी आपने 10 अशरा मुबशरा, अशरा का मतलब ही 10 है, कभी आपने उनके बारे में ये सुना कि वो नमाज़ें बहुत पढ़ते थे, रोज़े बहुत रखते थे, हज बहुत किए उन्होंने, चैरिटीज़ बहुत थी? नहीं, आप तारीख खोल के देखिए, ये उस दौर में इस्लाम का हाथ पकड़ते हैं जिस वक्त इस्लाम अजनबी था। अदीन बदौ गरीबन, तो वो लोग जो गिरे पड़े वक्त में, जब इस्लाम को ठोकरें पड़े, जब लोग इस्लाम को ऐसे देखें जैसे कोई सौतेला बच्चा, नफ़रत भरी निगाहें, और जिसका दिल चाहे इस्लाम पे बात करें, और जब अपने ही लोग दीन पे अमल करना छोड़ दें, गैरों की बात क्या करना। मैंने किसी जगह दावा वर्कशॉप दी, दावा वर्कशॉप, तब उस दावा के लफ्ज़ के साथ ही हमारे दिन में नॉन मुस्लिम आ जाते हैं। यू डू दिस डू दिस डू दिस, अपने नॉन मुस्लिम्स को ऐसे बुलाओ, उनको दावत दो, खिलाओ पिलाओ, उनकी मदद करो। लेकिन ये बातें कहते हुए उन सब के चेहरों से मुझे खुद भी सवाल नज़र आता है कि उन तक तो ज़रा बाद की बात है, कौन हमारे नेबर में कोई गोरे हैं तो उनको जाके कहे और कोई दूसरा करे, हमारे तो अपने घरों में भी दीन नहीं आया। आज हम मुसलमान इस मुश्किल में पड़े हुए हैं। क्या हमारे इर्द गिर्द तब्दीलियाँ क्यों नहीं आ पा रही? क्योंकि हम अजीमत की सतह से उठकर फ़राइज़ की सतह पे जीना ही काफ़ी समझते हैं, और वो भी इल्ला माशाल्लाह सारे अगर फ़राइज़ भी पूरे करने लग जाए ना, ये भी याद रखिएगा, अगर सारे मुसलमान सिर्फ फ़राइज़ के भी पाबंद हो जाएं, तो ये कभी हो नहीं सकता कि उनकी नमाजें उनको फ़ुहश से दूर ना करें, क्योंकि नमाज का तो असर है, इन्नस सलात तनहा अनिल फ़ख्शाई वल मुनकर, नमाज तो बेहयाई और मुनकर से रोकती है। फिर ये नहीं हो सकता कि मस्जिद के नमाजी भी हैं और फिल्म भी कोई नहीं छूटती। फिर ये नहीं हो सकता कि हज भी हर साल करने की कोशिश और उमरा तो कभी छोड़ा नहीं, लेकिन जब शादियों खुशियों गमों के मौके आए तो हम नाफरमानी का कोई सामान भी ना छोड़े कि क्या करें, खुशियों के रोज़ थोड़ी आती हैं। ये नहीं हो सकता। ये ऐसे जैसे आप एक कप में गर्म और ठंडा जमा नहीं कर सकते ना, गर्म चाय में आप ठंडा दूध डालेंगे दोनों मिलके माइल्ड तो हो जाएंगी, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि आधे कप में गर्म और आधे कप में ठंडा हो। बिल्कुल इसी तरह आज हम बहुत सारी नेकियां करने के बावजूद भी चेक करके देख ले तो हमारी नेकियां हमारी इबादत का असर हमारी अमली ज़िंदगी में नहीं दिखता, और उसकी बहुत बड़ी वजह क्या है कि हम मुखालफत से डरते हैं। घर के कमरे में आप 4 फ़र्ज़ पढ़ के 2 सुन्नत पढ़ रहे थे, आप 6 नफिल भी पढ़ लें, किसी को क्या लगे? आप अपने कमरे को दरवाज़ा बंद कीजिए और पढ़िए, नो प्रॉब्लम। मसला कब होगा? जब आप घर में ऊंची आवाज़ से चलने वाले म्यूज़िक को रोकने की कोशिश करेंगे। लोगों को आपकी ज़ाती इबादत से कोई गरज नहीं है, इल्ला ये कि आप उनका बहुत सारा टाइम ना ले लें, फिर वो कहेंगे तुम नमाजें ही पढ़ती रहती हो। मोस्टली लोग शुक्र करते हैं, चले आप नमाज पढ़ें हमें नस्ताएं। मसला कब पड़ता है? जब हम अपने बच्चों पे, अपने शोहरों पे, अपनी बीवियों पे तनकीद करते हैं, उस वक़्त पे शोर मचता है और लोग कुरान पढ़ें और बदलने लगे तो लोग ये नहीं कहते कि दवा का असर हो रहा है। देखिए आप कोई गोली खाते हैं ना तो उसका असर हो तो घर वाले खुश होंगे ना कि ये दवा बड़ी इफ़ेक्टिव है, इस डॉक्टर के पास ज़रूर जाना, इसका फ़ायदा हो रहा है, उस पर तो खुश होंगे। लेकिन कुरान पढ़ने वाला अमल करे तो कहते हैं ये क्या हो रहा है, उनको ऐसा लगता है ये कुरान की दवाई रिएक्ट कर रही है, ریئیکشن ہو گیا، الرجی ہو گیا، چھوڑ دو، ہم قرآن پڑھیں اور تبدیل نہ ہوں، کوئی زبدر رابین والی کیفیت نہیں ہماری زندگی میں آئے گی۔ تو اگر آپ بتائیے ہم دین سیکھیں اور تبدیلی نہ آئے تو پڑھنے کا فائدہ کیا؟ ایسے یہ کہ کوئی گولیاں اتنی کھائے اور اس کو فائدہ نہ ہو تو کیا فائدہ؟ اور یاد رکھیے، جتنا آپ کا عمل بڑھتا جائے گا اتنی مخالفت بڑھے گی۔ گہرے سمندروں میں لہریں اونچی اٹھتی ہیں، اسی طرح جس انسان کے اندر ایمان زیادہ ہوتا ہے اور اس کا عمل صالح پختہ ہونے لگتا ہے اتنی مخالفت زیادہ ہوگی۔ لیکن آپ کبھی نوٹ تو کریں، پیچھے سے اٹھتی ہوئی لہریں کناروں پہ آ کے سر پھوڑ دیتی ہیں، ہر مخالفت وقت پہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اسلام کی شان ہے، اسلام چاہتا ہے کہ انسان مفید بنے، اس لیے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ جب آپ لوگوں کے نفع کے بنتے جائیں گے، اس کتاب کے بعد آپ ججمنٹل نہیں بنیں گے، تنقید نہیں کریں گے اٹھتے بیٹھتوں پہ، لوگوں پہ فتوے نہیں دائر کریں گے کہ آپ منافق اور کافر، اپنے عمل اور اپنی درد مندی کے ساتھ لوگوں کے لیے کیئرنگ بنتے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے شور ختم، مخالفت ختم، اور پھر لوگ کہیں گے تمہارے پاس کوئی اچھی ہی چیز ہے، لاؤ میں بھی اس کو چکھوں۔ دیکھیے، اس کو آپ اس طرح سمجھیے کہ جیسے آپ کوئی بڑا مزے کا کھانا پکاتے ہیں اور اپنے میاں جی کو کہتے ہیں کہ آئیے کھانا کھا لیں، وہ کہتے ہیں مجھے بھوک نہیں ہے، یا اپنے بچوں کو بلاتے ہیں کہ بیٹا آؤ کھانا کھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں امی مجھے بھوک نہیں، آئی ایم ناٹ ہنگری۔ ہو سکتا ہے باہر سے برگر کھایا تو بھوکا سے لگنی ہے، لیکن کبھی کبھی نہیں بھی ہوتا، ابھی نہیں بھوک۔ اب ایک صورت ہے آپ سر پہ سوار ہو جائیں، کھا لو نا ٹھنڈا ہو رہا ہے، پھر یہ وہ، اس کا زیادہ اثر نہیں ہوتا۔ آپ کیا کریں، وہ کھانے کی ڈش ٹیبل پہ رکھیں، کہنا اچھا میرے پاس بیٹھ جاؤ میں کھانے لگی ہوں۔ بلیف می، جو ہی آپ وہ ڈھکن اٹھائیں گے نا، اس میں سے جو خوشبو کے بھبوکے ڈلیں گے اور آپ پاس بیٹھ کے اس کو کہ میرے سے باتیں کرو میں کھا رہی ہوں، تھوڑی دیر میں آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، وہ آپ ہی کی پلیٹ میں سے لینا شروع کر دیں گے۔ یہ ہے دین کی تبلیغ کا سب سے خوبصورت طریقہ، آپ اپنے دین کو خوشبودار کریں اور اس کے بعد لوگ آپ کی طرف خود مائل ہوں گے۔ انسان کا بچہ ہے نا، ہر ایک انسان ہم میں سے، اس کے اندر اچھی چیز کی کشش ہے۔ صحابہ کرام نے جس طریقے سے یہ دین پھیلایا، وہ لفظ نہیں تھے، تقریریں نہیں تھیں، لمبے چوڑے باز نہیں تھے، وہ لوگوں کے لیے مفید بننا تھا۔ اسی لیے اگلی آیتوں میں ہم پڑھیں گے کہ جو لوگوں کو نفع دے گا وہی بچے گا۔ آپ لوگوں کو دینے والے بن جائیں، بلیف می، تبلیغ کا پہلا نقطہ یہ کہ آپ دینے والے بنیں، لینا نہیں۔ کیا دوں میں، میرے پاس ہے ہی کیا؟ خوشی دیں، کیئر دیں، اسمائل دیں، کوئی پیسے لگیں ان تین چیزوں میں، محبت دیں، دکھ نہ دیں، ان کی غیبت نہ کریں، ان کی طرف سے اگر کوئی تکلیف پہنچے تو صبر کریں، اس میں تو کسی میں کوئی پیسہ نہیں لگا۔ آپ کیوں کہتے ہیں ہمارے پاس دینے کو کچھ نہیں، پھر کچھ ہو تو اپنے پکائے میں سے ایک چھوٹی سی پیالی میں چیز نکال کے ان کو بھی دے دیں، یہ چکھیں یہ کیا ہے۔ اگر ہم لوگوں کو سرو کرنے والے بن جائیں تو لوگ شکر کریں گے کہ ہم کہیں رہیں، ہم ان کے پاس ہوں، خوشبو دیں، سایہ دیں۔ صحابہ کرام کی تاریخ دیکھ لیجئے، جس بستی سے گزر جاتے تھے وہاں تبدیلی آ جاتی تھی، لوگ محبتیں کرتے تھے۔ محمد بن قاسم مسلمان تھے، کن کے ووٹوں سے آئے تھے؟ ہندوؤں نے بھی ان کو ووٹ دیے تھے، کیونکہ وہ راجہ داہر کے ظلم و ستم سے تھکے ہوئے تھے، ان کو یہ پتا تھا کہ یہ مسلمان جب اقتدار میں آتے ہیں تو یہ کم از کم ظلم نہیں کرتے، ہماری بہو بیٹیوں کی عزتوں پہ نظر نہیں ڈالتے۔ ہندوؤں نے کہتے ہیں کہ ان کا ایک بت بنا کے اپنے مندر میں رکھا ہوا تھا، کہ اتنی خوبیوں والا شخص کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، آج ہم وہ بنے نہیں نا، آج ہم قرآن کے ساتھ جڑے نہیں، آج ہم نے وہ کردار اپنے اندر رکھا ہی نہیں ہے۔ یہ آیتیں ہمیں ایک سوچ دے رہی ہیں کہ سوسائٹی کے اگر تھوڑے سے لوگ بھی قرآن کی وحی کو اور اس بارش کو اپنے سینے میں جذب کر لیں اور کردار کے ساتھ، عمل کے ساتھ اس کے اوپر اپنے آپ کو جما لیں، تو ایک وقت آئے گا کہ لوگ ان کی تمنا کریں گے، خواہشیں کریں گے اور ان کو اپنی حکومتیں پیش کریں گے، جیسے پیچھے سورت یوسف میں پڑھ چکے ہیں۔ حضرت یوسف کیوں ضرورت بن گئے تھے بادشاہ کی؟ کیونکہ یوسف کے پاس وہ خوبی تھی جو اس وقت دوسروں کے پاس نہیں تھی۔